नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज चौदहवें वेलनेस न्यूरोथेरेपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रुप कैप्टन शुभांशी शुक्ला ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट दीर्घा का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज चौदहवें वेलनेस न्यूरोथेरेपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठा सके, इसके लिए सरकार नए केंद्र खोलने की दिशा में काम कर रही है।
एक बेहतरीन कार्यक्रम, एक सुंदर प्रयोजन आरोग्य पीठ की अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के बारे में हम सबको इतना ज्ञान मिलना ये अपने आप में हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, इसलिए आपको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची हूँ।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत और व्यय वंदना योजना से लाखों जरूरतमंदों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवच प्राप्त हुआ है। वहीं आरोग्य मंदिर जनता को घर के नजदीक निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक को सस्ती, सुलभ और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन दिल्ली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में ज्यादा इंडस्ट्री आएंगी, प्रत्येक युवा को रोजगार और कौशल के समान अवसर मिलेंगे।
मॉडर्न इंडस्ट्री, पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री दिल्ली में लाई जाए, इसके लिए हम लोगों ने अभी टूरिज्म सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट समिट पिछले हफ्ते ही दिल्ली में किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद थी। और आज मैंने फिक्की फ्लो से ये रिक्वेस्ट किया है कि इंडस्ट्री भी दिल्ली में लाने के लिए और साथ में इस प्रकार के और जॉब फेयर दिल्ली में आयोजित करने के लिए दिल्ली के युवाओं को बेहतर अवसर मिले, बेहतर ट्रेनिंग मिले, बेहतर स्किल मिले, इसके लिए हमारे पास एक्शन प्लान है और हम इसको लागू करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं के लिए मॉडर्न इंडस्ट्री और प्रदूषण रहित इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए संकल्पित है। श्री मिश्रा ने देश की कंपनियों से आग्रह किया कि वे दिल्ली के युवाओं के लिए ऐसे रोजगार मेले का आयोजन करते रहें। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज आईटीओ स्थित कार्यालय से रिंग रोड का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख समस्याओं की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को आज जमीनी हकीकत से अवगत कराया जा रहा है।
सारे अधिकारियों को बस में बिठाकर उनको दिखा रहे हैं कि जमीन पर क्या हकीकत है, कहीं पर बोर्ड टूटा हुआ है तो कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर टाइल टूटी हुई है। पूरा रिंग रोड जो कि दिल्ली की लाइफ लाइन है, आज हम उसके ऊपर में चल रहे हैं, 2.5-3 घंटे का रूट बनाया है, तो सारी समस्या उनको बता रहे हैं और जल्दी से जल्दी कैसे काम हो उसको ठीक करें उसकी चिंता है।
समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रास सिंह ने आज बवाना विधानसभा क्षेत्र के माजरा डबास और बूढ़नपुर माजरा गांव में नई पानी की पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बवाना क्षेत्र के कई गांवों में पानी की लाइनें 35 से 40 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी वजह से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी जर्जर पाइपलाइनें बदली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन गांवों और जेजे कॉलोनियों में अब तक लाइनें नहीं बिछाई गई हैं, वहां भी अंतिम छोर तक पाइपलाइन पहुंचाकर हर घर को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल से शुरू हो रहे ऑल इंडिया स्पीकर सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यह आयोजन लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और शासन में जवाबदेही तय करने के संकल्प को भी दोहराता है। दिल्ली विधानसभा 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। इस सम्मेलन में देशभर में विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्य वक्ताओं में माननीय राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सहित अन्य अतिथि शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र INGCA में आज रामायण कथा की विश्व यात्रा, हमारी संस्कृति, राष्ट्रीयता और पूर्वजों की पुण्य भूमि नामक पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। यह त्रय लेखक विनोद कुमार तिवारी द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, INGCA के निदेशक राम बहादुर राय सहित अन्य उपस्थित रहे। पुस्तक विमोचन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से INGCA द्वारा किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 99वें वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थी न केवल दिल्ली का बल्कि देश का नाम भी पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अपने जीवन का एक हिस्सा राष्ट्र के उत्थान के लिए जरूर समर्पित करें और एकजुट होकर एक नई, बेहतर और सशक्त दिल्ली बनाए। श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली को शिक्षा केंद्र बनाने का आह्वान किया।
दिल्ली को हमें एक एजुकेशनल हब बनाना कि देश और दुनिया से लोग आए और आ करके हमारे यहाँ अपनी स्टडीज करना चाहें। दिल्ली फिर से रिवाइव हो, एक नई पॉजिटिव इमेज के साथ में हम वर्ल्ड के मैप पे आए।
दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA आज और कल पीएम उदय योजना को लेकर शिविर आयोजित कर रहा है। पीएम उदय योजना के तहत घरों पर कानूनी अधिकार दिलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस शिविर से नए पंजीकरण करने, पंजीकृत निवासियों को आवेदन भरने और योजना से जुड़े अन्य दस्तावेज तैयार करने में सहायता मिलेगी। दिल्लीवासी इस शिविर से संबंधित अधिक जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आज देश में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाने और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा पर ले जाने की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। अंतरिक्ष दिवस समारोह के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में कई मंत्रालयों, निजी हितधारकों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कम समय में ही युवाओं के बीच उत्साह और आकर्षण का विषय बन गया है।
इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है।
ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट दीर्घा का उद्घाटन किया। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए इसे गौरव का क्षण बताया और कहा कि यह देश के लिए स्वर्णिम समय है। उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिज्ञासा पैदा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े महत्वाकांक्षी सपने हैं और इससे सपनों को हकीकत में बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि तारा मंडल के माध्यम से लोगों और बच्चों को अंतरिक्ष अन्वेषण और विज्ञान के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ पे एक कोशिश की जा रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। मुझे लगता है बहुत जरूरत है उन्हें ये बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास में और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीजों को समझ के हम वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना पिछले 11 वर्षों का सबसे बड़ा सुधार है। वहीं इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति पर गर्व और खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत ने 9 अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व हासिल किया है। आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर नारायणन ने इस बात को रेखांकित किया कि इसरो के इंजीनियरों ने तरल ऑक्सीजन के रिसाव का पता लगाकर एक्सियम 4 मिशन में हादसे को टालने में मदद की। डॉक्टर नारायणन का यह साक्षात्कार आज रात 9:15 आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन मामले में गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि 3 लोगों को आरोपी घोषित किया गया है जो नोएडा और गुरुग्राम में एक अवैध कॉल सेंटर चलाने में शामिल थे। निदेशालय ने बताया कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से आरोपी विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करने की जगह उनसे ठगी करते थे। इस कार्रवाई के दौरान आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खाते जब्त किए गए हैं। इसके अलावा निदेशालय ने उनके पास से 8 कीमती 4 पहिया वाहन और कई कीमती घड़ियां भी जब्त की हैं। रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले टफ मैन हाफ मैराथन कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एक यातायात निर्देशिका जारी की है। पुलिस ने लोगों को कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली स्थित बीपी मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, सेकेंड और फोर्थ एवेन्यू रोड तथा आसपास के क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। हाफ मैराथन के दौरान कल सुबह 4:00 से सुबह 9:30 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास प्रमुख मार्गों पर यातायात की आवाजाही नियंत्रित या बाधित रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत के यात्रियों को कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा देने के लिए एक निजी संगठन के साथ समझौता किया है। ये संगठन टैक्सी सेवा प्रदान करती है। इससे यात्रियों को नमो भारत कॉरिडोर के स्टेशनों और उनके गंतव्य तक आवागमन में असुविधा नहीं होगी। NCRTC के अनुसार न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत के सभी स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। निगम ने बताया के स्टेशनों पर पिकअप और ड्रॉप के लिए स्थान भी निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 2 तारीख को नई दिल्ली में 4th सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि पहली बार इस प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय मंडप शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 18 देशों और क्षेत्रों की 350 प्रदर्शनी कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। श्री कृष्णन ने कहा कि इस आयोजन में 9 राज्य भी भाग लेंगे।
आई थिंक दिस ऑल्सो बिल्ड्स ऑन द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। एज यू वेल अवेयर 10 प्रोजेक्ट्स हैव बीन क्लियर्ड एंड आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बाय बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड बी सीइंग द फर्स्ट इंडिया कमर्शियली इंडिया मेड चिप्स विच विल कम आउट ऑफ सम ऑफ द फैसिलिटीज दैट आर बीइंग बिल्ट करंटली।
राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार बार फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 14वें वेलनेस न्यूरोथेरेपी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के नेहरू तारामंडल में आर्यभट्ट दीर्घा का उद्घाटन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।